मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 20 जून 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने कल आप लोगों से वायदा किया था कि बेहतर होगा कि कुछ समय तक अब हम लोग जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा रही है उसके माध्यम से अपने अतीत को समझने की कोशिश करें और इस अतीत का संबंध मूलतः हमारे स्वतंत्रता की प्राप्ति से लेकर अभी तक की स्थिति से होगा। मैंने आपको यह भी बताया था कि भले ही सीधे सीधे इससे प्रश्न न पूछे जाए, कभी कभी पूछे भी गए हैं, लेकिन पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए इस पृष्ठभूमि की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और खासकर जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उन आर्टिकल्स को तब तक बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे जब तक कि इस पृष्ठभूमि का ज्ञान आपको न हो। और इसी बात को ध्यान में रख करके मैंने अपने डेली ऑडियो लेक्चर में थोड़ा सा ये बदलाव किया है और मुझे यकीन है कि कल का यह बदलाव आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, उसी क्रम में, यानी कि कल के डेली ऑडियो लेक्चर के क्रम में ही, मैं अब आपसे औद्योगिक नीति संबंधी जो दो प्रस्ताव हमारे रहे हैं उन पर चर्चा करूंगा। एक प्रस्ताव 1948 में आया था और दूसरा प्रस्ताव आया था 1956 में। और सच पूछे तो मुझे ध्यान आ रहा है कि कुछ साल पहले मेंस में इसमें से एक प्रस्ताव के बारे में सीधे सीधे प्रश्न भी पूछ लिया गया था। मित्रों, हालांकि जब हम इस तरह के औद्योगिक नीति, नीति शब्द है ना कि पॉलिसी, प्रस्ताव जैसे एक नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अचानक कुछ ये बात सी आती है कि यार इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, छोटी छोटी बातें होंगी और उन्हें याद रखना होगा। कैसे हम याद रखेंगे? यहां पर आप बस थोड़े से अपने पढ़ने और समझने का जो तरीका है उसे बदलने की कोशिश कीजिए। बदलने की कोशिश इस तरीके से कि देखिए, जैसे प्रस्ताव है 1948 और 1956 के बारे में हम लोग बात करेंगे और यह प्रस्ताव किससे संबंधित है? इंडस्ट्री से संबंधित है, राइट? तो जब इंडस्ट्री से संबंधित प्रस्ताव के आप पॉइंट्स पढ़ेंगे और उन पॉइंट्स में आप एक केंद्रीय बिंदु ढूंढेंगे तो बड़े आराम से आपको एक बिंदु समझ में आ जाएगा और आपको लगेगा कि बाकी जो दूसरी चीजें हैं वो इसी बिंदु यानी कि इसी केंद्र के चारों तरफ ही तो घूम रहे हैं। तो वो बिंदु क्या है? वह बिंदु है जो मैंने कल आपसे डेली ऑडियो लेक्चर के तहत बात की थी। कल आपसे बात करते हुए मैंने बताया था कि किस तरीके से जो कलकत्ता मॉडल था उसे नेहरू जी ने स्वीकार किया। कलकत्ता मॉडल क्या था कि नहीं, हम सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व में पूंजी आधारित भारी उद्योगों का विकास करेंगे, हाँ उसमें जो निजी क्षेत्र होगा वो सहायक की भूमिका निभाएगा, यानी कि जो प्रोमिनेंट सेक्टर होगा वो पब्लिक सेक्टर होगा, जो प्राइवेट सेक्टर होगा उसको सब्सिडरी एक तरह से रोल प्ले करना है। अब स्वाभाविक है कि जब आपने इस मॉडल को चुना है और मॉडल को चुनने के बाद आप 1948 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि इसी मॉडल के आसपास ही आप अपनी नीतियों को बुनेंगे। जो धागे आप रचेंगे, ताने बाने जो बनाएंगे, वो इसी बात को ध्यान में रख करके बनाएंगे ना कि जो सेंट्रल पोजीशन होगी वो पब्लिक सेक्टर की होगी और पेरिफेरी में हमारे निजी क्षेत्र होंगे। तो बस इसी पर आधारित है आपका पूरी तरह से औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, और इकोनॉमिक्स की किताबों में शॉर्ट फॉर्म में और आर्टिकल में भी शॉर्ट फॉर्म में आपको पढ़ने को मिल जाएगा IPR 1948, इंडस्ट्रियल पी पॉलिसी आर रेजोल्यूशन IPR 1948, राइट? अब आप देखिए कि जो 1948 का ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, इसने तीन मूल सिद्धांतों को अपनाया, यानी कि इस पॉलिसी के तहत हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तीन ऑब्जेक्टिव्स मेन रहे। पहला था कि हमारे यहां का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, उसमें लगातार वृद्धि होती रहे, लगातार बढ़ोतरी होती रहे, क्योंकि सीधी सी बात है कि उत्पादन से ही रोजगार जुड़ा हुआ था। दूसरी जो नीति थी या कि दूसरा जो सिद्धांत था, दूसरा जो उद्देश्य था, वो था आय का समान वितरण। सच पूछे तो जो आय का समान वितरण है ये उदारीकरण से पहले हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। सरकार को लगातार ये लगता रहता था कि अगर हम निजी क्षेत्रों को ज्यादा तरजीह दे देंगे, निजी क्षेत्र उद्योग खोलने लगेंगे तो उनके पास ज्यादा धन का संकेंद्रण हो जाएगा, जो हमारे यहां की जो संपत्ति है ये कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाएगी, फिर जो गरीब आदमी है उनके हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं, वो कुछ पाएंगे ही नहीं। तो क्या किया उन्होंने कि नहीं सरकारी उद्योग लगाए ना, तो न उद्योगपति उद्योग लगाएंगे न धन का संग्रहण उनके पास होगा, धन उनके पास केंद्रित नहीं होगा। तो उन्हें ऐसा लगता था कि इसके माध्यम से हम धन का समान वितरण कर लेंगे, यानी कि आय जो आएगी वो लोगों तक समान रूप में पहुंच जाएगी, जबकि यह एक प्रकार से गलत सिद्ध हुआ। गलत सिद्ध देखिए इसलिए होना था कि आपने ठीक है उद्योग लगाने तो शुरू कर दिए, सरकार उद्योगपति भी बन गई, लेकिन आप जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का क्या हश्र हुआ, घाटा घाटा और घाटा। जब घाटा ही हो रहा है, आप कमाई ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका वितरण कैसे होगा। तो सेकेंड पॉइंट था, खैर जो सिद्धांत मूल सिद्धांत था वो था आय का समान वितरण, और तीसरा था कि औद्योगिक विकास में राज्यों की प्रमुख भूमिका, यानी कि जो स्टेट होंगे उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम इस औद्योगिक विकास में लेंगे। अब देखिए कि इन तीन मूल सिद्धांतों को केंद्र में रखते हुए उन्होंने जितने भी हमारे यहां के उद्योग थे उनको चार श्रेणियों में बांट दिया। बस यही सच पूछिए तो कुल मिलाकर के औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 भी है, उसमें जो चार श्रेणियां बनाई, पहली श्रेणी हुई ऐसी जो जिस पर सरकार का एकाधिकार होगा, मोनोपोलीज होगा, स्टेट मोनोपोलीज, यानी कि उन क्षेत्रों में केवल सरकार ही उद्योग लगाएगी, हथियार, गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा, रेलवे और परिवहन जैसे क्षेत्र, इसमें केवल सरकार उद्योग लगाएगी। दूसरी श्रेणी में उन्होंने मूलभूत उद्योगों को रखा, बेसिक इंडस्ट्री, लेकिन बेसिक इंडस्ट्री को भी उन्होंने केंद्र सरकार के अधीन ही रखा, केंद्र सरकार के अधीन, कि इस पे केंद्र सरकार ही उद्योग लगाएंगे। जैसे कोयला की खुदाई, कोयला से संबंधित उद्योग, जैसे मान लीजिए कि आपको बिजली ही बनानी है, लौह एवं इस्पात उद्योग, जहाज और विमान उद्योग, टेलीफोन उद्योग, खनिज तेल आदि निकालने का काम, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, केंद्र सरकार करेगी। और बल्कि यहां तक इस प्रस्ताव में कहा गया कि ये जो क्षेत्र हैं उद्योग के, यदि इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर काम कर भी रहा होगा तो सरकार आने वाले 10 सालों में उसे अधिग्रहित कर लेगी, यानी कि उसे एक्वायर कर लेगी, ये तक बात कही गई। तीसरे वर्गीकरण के तहत रखा गया रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज। ये जो रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज है मित्रों, इसने भारतीय उद्योगों का बहुत नुकसान पहुंचाया, लोगों का यह मानना है अर्थशास्त्रियों का। इसमें हुआ गया कि उन्होंने कुछ उद्योग रखे, जैसे चीनी, सुगर जिसे आप कहते हैं, कागज है, फर्टिलाइजर है, केमिकल्स हैं, वाहन हैं, गाड़ियां हैं, भारी मशीनें हैं, सीमेंट है, वस्त्र हैं, ऊलन कपड़े वगैरह, ये सारे के सारे उन्होंने रेगुलेटेड इंडस्ट्री में लेकर के आए। अब ये जो रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, जो मैंने भी आपको नाम बताया, तो सुनकर के आपको लगा होगा ये तो आम लोगों के उपयोग की चीजें हैं, वो उनको उपयोग में लाती हैं। तो सरकार को ये लगा कि यदि हम इन्हें खुला छोड़ देंगे, उद्योगों के हाथ में दे देंगे, तो ये मनमानी इसकी कीमतें रखेंगे, मनमानी उत्पादन करेंगे। तो सरकार ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करने देंगे, हम इन उद्योगों को रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट करने का क्या मतलब हुआ कि सरकार इनकी जो कीमतें होंगी वो निर्धारित करेंगे, कि ठीक है सीमेंट आप पैदा कीजिए, उत्पादन कीजिए सीमेंट का, लेकिन उसकी कीमत क्या होगी ये सरकार निर्धारित करेगी। और आप उद्योग लगाइए, आप कितना सीमेंट उत्पादन करेंगे उसका भी फैसला सरकार करेगी, यानी कि कितनी मात्रा का उत्पादन होगा यह सरकार करेगी और उसकी कीमत कितनी होगी यह भी सरकार करेगी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर किसी उद्योग को आप इतना प्रतिबंधित कर देंगे, इतना ज्यादा रेगुलेट करने लगेंगे, तो उद्योगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आप थोड़ा सा अपने दिमाग में ले आइए, बाद में चल करके आगे आप इसके बारे में भी जान जाएंगे। इसके बाद फिर कुछ इंडस्ट्री ऐसे रही जिसको उन्होंने प्राइवेट इंडस्ट्री कहा, यह चौथा वर्गीकरण था, निजी उद्योग। उसमें यह था कि ठीक है ये उद्योग अपना उद्योगपति लगाएं और अपना जो भी करना है वो करें, अगर सहकारी समितियां भी चाहती हैं तो इस क्षेत्र में उद्योग लगा सकती हैं। इस तरह से उन्होंने चार भागों में वर्गीकृत किया उद्योगों का। इसके बाद 1954 में संसद ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया और ये आपके दिमाग में अलग से मौजूद रहना चाहिए क्योंकि एक ऐसा तथ्य है जो बहुत सी बातों को सिद्ध करने में आपकी मदद कर सकता है। 1954 दिसंबर 1954 में संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के रूप में समाजवादी स्वरूप वाली व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। मतलब हमारा आर्थिक स्वरूप क्या होगा, यानी कि आर्थिक नीतियां क्या होंगी, और दूसरा हमारे समाज का रूप क्या होगा, उसके बारे में उन्होंने फिक्स किया कि वो समाजवादी होगा। 1954 तो सीधी सी बात है कि संसद ने इसे स्वीकार किया है, मतलब राष्ट्र ने स्वीकार किया है। तो अब आपको अपनी सारी नीतियां, चाहे वो अर्थशास्त्र से संबंधित हो, चाहे वो समाज सोशल वेलफेयर से संबंधित हो, सोशल स्ट्रक्चर से संबंधित हो, वो सब समाजवादी सिद्धांतों के अनुकूल होनी है। दोस्तों 1954 में संसद ने स्वीकार किया और अगर 1956 में वो अपना दूसरा औद्योगिक नीति प्रस्ताव लेकर के आती है तो स्वाभाविक है कि वो अब समाजवादी व्यवस्था के चारों ओर ही घूमने वाली नीति होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो अब आप देखिए कि उन्होंने क्या किया। 56 को समझना, के प्रस्ताव को समझना बहुत आसान है और इसे ही कहा गया फिर आईपीआर 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। देखिए इसमें आपको बहुत परेशान होने की बात नहीं है, उन्होंने बस केवल थोड़ा सा परिवर्तन किया। मैं देखिए उन बातों को मैं छोड़ रहा हूं जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपके काम की नहीं है, क्योंकि हम जनरल स्टडीज के तहत इसे देख रहे हैं। अब उन्होंने केवल एक काम किया, आप अपने दिमाग में बस ये रखिए कि देखिए 1948 में उन्होंने जितने भी उद्योग थे उनको चार भागों में विभाजित किया था, राइट। अपने दिमाग में थोड़ा सा दोहरा लीजिए कि वो चार भाग कौन से थे। उन चार भागों को इन्होंने एक तो भाग की जगह, वर्गीकरण की जगह शेड्यूल नाम दे दिया और उसकी संख्या कर दी 3, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा अलग अलग देख लेते हैं। शेड्यूल ए, शेड्यूल ए में उन्होंने उन उद्योगों को रखा जो पूरी तरह से केंद्र के अधीन रहेंगे, केंद्र उस पर केवल उद्योग लगा सकती है। 17 इंडस्ट्रीज के तहत रखे गए जिसमें परमाणु ऊर्जा, सैन्य सामग्री, विमान, लौह इस्पात, विद्युत, कोयला, प्रमुख खनिज, ये सारे थे। तो आप इसमें देखेंगे कि जो शेड्यूल, जो वर्गीकरण के तहत जो ए पहला और दूसरा वर्गीकरण था उसकी चीजें काफी कुछ मिला दी गई, उसको शेड्यूल ए कर दिया गया और ये पूरी तरह से केंद्र के अधीन है। अगर आप 1948 को याद करें जो मैंने अभी आपको बताया, तो उसमें भी आप देखेंगे कि चाहे वो वर्गीकरण एक हो या वर्गीकरण दो हो, वो जितने भी उद्योग थे वो केंद्र के अधीन ही थे। तो यहां आ गए, वो बहुत सिंपल सा है। फिर उन्होंने कहा शेड्यूल बी, शेड्यूल बी में उन्होंने कहा कि राज्यों द्वारा स्थापित किए जाने वाले उद्योग, ये राज्यों के द्वारा स्थापित किए जाएंगे लेकिन जो निजी क्षेत्र होंगे वो सहायक के रूप में इसमें उपस्थित रहेंगे। इसके तहत उर्वरक, सड़क परिवहन, समुद्री परिवहन, इन सबको शेड्यूल बी में रखा। इसके बाद उन्होंने रखा शेड्यूल सी, शेड्यूल सी में रिमेनिंग सभी इंडस्ट्री, जितने भी अब उद्योग बच जाएंगे वो सारे के सारे शेड्यूल सी में रहेंगे और इन उद्योगों को पूरी तरह से निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। दोस्तों कुल मिलाकर के यही 1948 और 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव है। अब आप देखिए कि मुझे खासकर जिस पर्पस से मैं इन सब्जेक्ट्स को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं, केवल आपको यह विश्वास दिलाना था कि भले ही किताबों में पढ़ने पर आपको ये थोड़े से कठिन महसूस होते हों, लेकिन दरअसल ये कठिन होते नहीं है। थोड़ा सा भी अगर कोई एक्सप्लेन करने वाला आपको मिल जाए और सरल तरीके से आपके दिमाग में इसे बिठा सके तो देखिए कि बहुत ही सरल सी चीज है। और एक बार अगर आपके दिमाग में वो चीजें बैठ गई तो फिर ये उतनी आसानी से जाने वाली नहीं है, कम से कम तब तक तो ये नहीं ही जाएंगी जब तक कि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देते रहेंगे। तो दोस्तों अब आज के डेली ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी और फिर इसी से संबंधित नए टॉपिक पर बात करेंगे। अब आप सबकी इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।